أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1977 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 40 سے ہو رہا ہے. 24/4 پچھلے جمعہ کو جشن قرآن عظیم کے سلسلے سے خصوصی درس تھا، اس لیے جو مسلسل درس چلا آ رہا تھا اس میں دعویٰ ہو گیا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی، جسے اس نے نور السماوات والارض کہا تھا، اس روشنی میں سفر زندگی طے کرنا چاہیے اور اس کے خوشگوار نتائج بتائے تھے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا تھا کہ جو اس روشنی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے اعمال کی پہلی مثال اس نے دی تھی خراب سے. جو لوگ خدا کی عطا کردہ رہنمائی میں زندگی کا سفر نہیں طے کرتے، پہلی ان کی کیٹیگری، ایک کیٹیگری ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں. اور اس نے کہا یہ تھا کہ پھر شدت جذبات میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ریت بھی پانی کا چشمہ بن کے دکھائی دیتی ہے. کوئی شے اپنی اصلی حیات میں اس کے سامنے آتی نہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہاں اس نے بتایا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی کھڑا ہو کر اپنی عقل و فکر سے ہی کام لے لے تو وہ دلائل کی روح سے بھی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو چٹیل میدان ہے، یہاں سبزی کا رویدگی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں اتنا لمبا چوڑا پانی کی جھیل کیسے ہو سکتی ہے. لیکن شدت جذبات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر عقل و فکر بھی مأوس ہو جاتی ہے. تو پہلی کیٹیگری تو یہ ہوئی کہ عقل و فکر تو ہے لیکن شدت جذبات کی وجہ سے ان سے کام نہیں لے سکتا انسان. ساری دوڑ دھوپ، ساری تگ و تاز، ساری صحیح عمل رائے گا جاتی ہے اور آخر میں جا کے وہ دیکھتا یہ ہے کہ جسے پانی سمجھا تھا وہ تو ریت کی دھوکہ دینے والی چمک تھی. اس کے بعد دوسری کیٹیگری، وہ دوسرا گروہ سامنے لاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے، ان کی مثال بھی کظلمات فی بحر لجیج یغشاہ موج من فوق ہی موج من فوق ہی صحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج يده لم يكد جراح. اگلا ٹکڑا جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کہا کہ یہ دوسری کیٹیگری، یہ دوسرے گروہ کے لوگ وہ ہیں جن کے اعمال میں مطلب یوں سمجھو تاریکیاں ہیں، ایسی تاریخیاں کہ پہلے تو جیسے سمندر کی تہ میں باہر کی روشنی قطر نظر نہیں آتی اور پھر سمندر بھی ساکن نہیں ہے، موج در موج، کہ اگر پانی کی ایک سطح پرے ہٹتی ہے تو اس کے بعد اس سے دگنی چوگنی تہ اور اس کے اوپر آ جاتی ہے. اوپر آسمان میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن اس سورج کے آگے تاریخ گھٹا تو بادل آ جاتے ہیں، اس روشنی کو بھی وہ روک دیتے ہیں. اندازہ لگائیے اس تاریکی کا، سمندر کی تہ، اوپر تو بر تو، موج در موج تاریکیاں، پھر باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا. ان تاریکیوں کے اندر کہا کسی دوسری چیز کا نظر آنا تو ایک طرف، انسان کو خود اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جہالت کی تو بر تو تاریکیوں کی یہ مثال بھی قرآن میں ہے. وہاں چمک تھی دھوکہ دے دینے والی, جس سے فریب کھا جاتا ہے انسان, نگاہیں کھیرا ہو جاتی ہیں. یہاں چمک کی وجہ سے خود فریبی نہیں, تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اور سب سے بڑی چیز اس تاریکی کی یہ ہے کہ خود اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا. یہ ہے اصل چیز جو یہاں کہی گئی. ظلمت کے معنی تاریکی ہوتا ہے. میں آگے ذرا ابھی عرض کروں گا کہ مادے کے اعتبار سے واد لام میم تو ظلم یہیں سے ہے. ظلمت تاریکی ہوتا ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے جمع کے سیگے میں آیا ہے, ظلمات ہی آیا ہے. یہ نور اس کے مقابلے میں روشنی کو کہتے ہیں, اور وہ ہر جگہ واحد کے سیگے میں آیا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے. نور تو حق ہے, ظلمت باطل ہے. یہ جو نور ہے میں نے کہا ہے ہمیشہ واحد ہے. صحیح جواب ایک ہوتا ہے ہمیشہ, اور غلط جواب سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے. صحیح جواب دو ہو ہی نہیں سکتے. وہ جمع تو ایک طرف تفریح کے سیگے میں بھی نہیں آ سکتا. یہ غلط جواب ہیں جو جوابات غلط ہوتے ہیں. صحیح نشانہ تو ایک ہوتا ہے, اور جب صحیح نشانہ مس کر جائے تو اس کے بعد پھر ہزاروں نشانے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نور تو ہر جگہ واحد کے سیگے میں آیا ہے قرآن میں, اور جہاں اس نے تاریکی کا ذکر کیا ہے تاریکیاں کہا ہے. اس کی بڑی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تاریکیوں کی. تاریکی کا نتیجہ جو بتایا یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا. میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دیتا ہے. وہ سراب کی خود فریبی ہو, اس میں تو اپنے جذبات سے دھوکہ کھاتا ہے. اور یہ جو تاریکیاں جہالت کی بتائی ہیں, اس میں وہ خود فراموش ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا. اور یہ وہ تاریخی ہیں جس متعلق کہا کہ وہ موج در موج تہ در تہ اس کے اوپر آتی چلی جاتی. مگر کی دنیا میں یہ تاریخیاں کیا ہیں؟ یہ تاریخیاں تقلید کی تاریخیاں. تقلید کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنا تشخص کھو دیتا ہے. بھئی تم جو یہ بات کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے یہ سچ ہے, کیسے کہتے ہو؟ جی فلاں صاحب نے فرمایا, فلاں امام کا قول ہے, فلاں مفسر کی کتاب نے لکھا ہے, حضرت صاحب نے یوں ارشاد فرمایا ہے. یعنی اپنا آپ درمیان میں ختم ہو جاتا ہے, میں رہتا ہی نہیں ہے. اس کا مقام ہونا تو ایک طرف رہا, دہن کا ذکر کیا, یہاں ساری غائب ہے غریبا سے, وہ خود اپنا آپ ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے تقریر میں میں آتا ہی کہیں نہیں. بلکہ یہ اس میں اگر کہا جائے کہ اس کے بعد میری یہ رائے ہے تو وہ مذہب اور بے دین ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ سندیں یہ کوٹ کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بڑا عالم کہلائے گا. یعنی جتنا جاہل سے اجہل ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ بڑا جید عالم ہو جائے گا. یہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ تاریکی کی تہ در تہ تاریکی, یہ وہ تاریکی ہے جس کی سند ان کے ہاں ہوتی ہے تواتر, توارث. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ان کے ہاں یہ جو کسی بات کے سچے ہونے کی سند ہے وہ یہ ہے کہ تواتر سے یہ چلی آ رہی ہے بات امت کے اندر. متواتر, تہ در تہ, موج در موج. اور وہ پھر جتنا تواتر جتنا لمبا ہوتا چلا جائے اتنی ہی اس کی سچائی اس بات کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی پہلا جھوٹ اگر پانچ سات دس تہوں کے نیچے آ جائے یا آگے بڑھ جائے تو وہ پھر سچ ہو جاتا ہے. बहुत बड़ी सनद है मजहब की दुनिया में तवातुर जिसे कहती है। असलाफ में से भी किसी एक सलफ का कौल नहीं वो बयान करते। असलाफ का मसलक ये है, बहुत से उसके अंदर तह होनी चाहिए ना दोनों बात में। सलफ सालहीन कहेंगे वो भी जमा है, तय दर तय, मौज दर मौज। किसी बात के मुतालिक इनसे भी पूछ लीजिए, कोई फतवा इनसे मांग लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें ये इन असलाफ के अकवाल नकल करते चले जाएंगे और सनद ये होगी कि फिर तवातुर से ये चीज आई। तवातुर कहां तक चलता है? कुराने करीम के अहकाम को मनसूख कर देता है तवातुर। यूं एक मिसाल मैं अर्ज करता हूं, हमारे मेरे साथ तो ये चीज होती चली आ रही है। कुरान करीम में वसीयत के मुतल्लिक वाजिया हुक्म है कि हर शख्स अपने पूरे माल में वसीयत कर सकता है जिसके लिए में चाहे। हमारे यहाँ की शरीयत में कहा यह जाता है कि ये वसीयत सिर्फ एक तिहाई माल में कर सकता है और वो भी अपने वरसा में से किसी के हक में नहीं कर सकता। तो ये तो कुरान करीम के सरीह खिलाफ हुई ये बात। ये चीज मैंने लिखी तो उसके जवाब में लिखा गया, किताब का शाया किया हुआ है मौलाना अब्दुल वहाब साहब, वो हैं, वो मरहूम हो गया। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, कुरान की ये आयत है, एक रवायत में वो आया है और उसके बाद उम्मत का तवातुर से इस पर अमल है, इस वास्ते इसने कुरान की उस आयत को मनसूख कर दिया। सनद है तवातुर का। हर गलत बात जिस पे दो चार सदियां गुजर जाएं, फिर वो सही हो जाती है, सनद हो जाती है, ऐसी बड़ी सच्चाई हो जाती है कि कुरान के हुक्म को भी मंसूख कर सकती है। गुलामात आप देख रहे हैं, तह बात है। एक ही चीज थी जिससे ये तारीख की छट सकती थी, हट सकती थी, कि वो जो आसमानी रोशनी है वो पहुंच जाती। कहा उसके नीचे इन्होंने खुद ही बादलों की तहें बिछा रखी होती हैं, वो आने ही ना पाए इन तक। अब वो फिक्र के चराग गुल कर दिए जाते हैं। इंसान के अपने अकल फहम शुऊर इल्म तदब्बुर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये चीज थी जिसकी रूह से ये आसमानी रोशनी से इस्तेफादा कर सकता था, उसके सामने बादलों की तह लगा दी जाती है। नीचे आप इन जुलमात के अंदर रहते हैं और नतीजा जैसे मैंने अभी अर्ज किया है, इंसान अपने आप को गुमा देता, इसका अपना तशख्खुस बाकी नहीं रहता, मैं नहीं कहीं आती उसमें, अपना तदब्बुर कहीं नहीं आता, अपनी फिक्र कहीं नहीं आती। और सबसे बड़ा आजाद नहीं, सबसे बड़ी तावीज जो कुरान ने बताई वो ये, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुद्दाहा फअनसाहुम अन्फुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाना कि जिन्होंने खुदा को फरामोश किया। तो खुदा को फरामोश क्या करना था, वो खुद फरामोशी में मुब्तला हो। फअनसाहुम अन्फुसहुम, अपनी जात के मुंकिर हो गए, अपना सेल्फी भूल गए। साइकोलॉजी में भी ये जो कॉन्शियसनेस होती है, एक सिंपल कॉन्शियसनेस होती है, ये हैवानात में भी होती है, जहां भी जिंदगी होती है वहां होती है ये। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, शऊर खीश जो है, ये सिर्फ इंसान के अंदर मुमकिन है। इंसान का जो इम्तियाजी जौहर है वो शऊर खीश है, अपनी जात का शऊर, अपने आप का तशख्खुस, अपना कॉन्शियसनेस, मैं होना जो है, ये है इंसान की, इंसानियत की सनद। कुरान कहता है कि खुदा को भुला देने का, फरामोश कर देने का फितरी नतीजा ये है कि इंसान अपनी जात को भुला देता है, खुद फरामोशी हो जाती है, मैं उसका रहता ही नहीं दरमियान में। आपने देखा कि इस तकलीद में जिसकी सनद तवातुर होती है उसमें होता क्या है, मैं दरमियान में बाकी नहीं रहता। तो जब ये इसकी अना, इसकी हुदी, इसकी जात, इसका सेल्फ बाकी ना रहे तो फिर ये रह क्या गया, सिंपल कॉन्शियसनेस के ऊपर। और आपको पता है कि तकलीद का लफ्ज कहां से निकला, अलादा है ये जो गाय भैंस के गले में रस्सी डाल के और आगे आगे से उसको खींचता है ना, उसे कलादा कहते हैं। तकलीद वो रस्सी है इसके गले में बंधी हुई जिसमें ये एक जानवर की तरह खींचे चला जा रहा। सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हुई, दीनी जहां रहा खुद रहा ना दीनी, ता चंद नादा गाफिल नशीनी, खुद राना भी। सबसे बड़ी चीज ये है इंसान खुदा, कुरान इंसान को उससे सेल्फ से आशना कराता है। ये तो और भी बहुत आगे जाता है, मुनकरे हक निज़्द मुल्ला काफिरस, मुनकरे खुद निज़्द मन काफिर तरस। मुल्ला के नजदीक तो खुदा का मुनकर काफिर है, मेरे नजदीक अपना मुनकर काफिर तर है। कुरान की आयत का तर्जुमा, ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। कुरान ने खुदा के भुला देने को अलग जुर्म करार नहीं दिया, कहा यह कि उससे होता यह है कि इंसान अपने आप को फरामोश कर देता है, यह है जो जुर्म होता है। इकबाल का तो सारा प्याम ही इसी चीज का है, सेल्फ जिसे कहते हैं, खुद ही जिसे उसने कहा, शाखे निहाल खिदरा ही खारो खसे चमन नशाओ। क्या बात, तू तो सिदरा की शाख, सिदरा की दरख्त जो युग की शाख है, इतनी बुलंदियों के है, मागता खारो खस क्यों बन जाता है। मुनकरे ऊ अगर शुदी मुनकरे खेश न नशाओ, उसका इंकार भी अगर तुमने कर दिया है, अपना इनकार न कर, अपना इनकार करेगा तो उसका इकरार तो एक तरफ रहा, अपने इकरार से भी चला जाएगा। अपना इकरार करेगा तो इम्कान इस चीज का है कि उसका इकरार कर ले, अपने इकरार से आगे चलती है सारी बात। मैं ईमान लाया, मैंने खुदा को माना, मैंने ये कुछ किया, और अगर मैं ही दरमियान में ना रही तो किसने खुदा को माना, किसने इकरार किया, किसने ये काम किया, वो तो मैं ही है नहीं। बहुत बड़ी चीज है ये, है तो वो यहूदी फिलॉसफर, लेकिन एक टुकड़ा उसका जो है बहुत काम का। वन हु कैनॉट से आई कैनॉट से दाऊ, जो मैं नहीं कह सकता वो तू भी नहीं कह सकता। जहालत तौबा बरताओ, जहालत तकलीफ से पैदा होती है। तकलीफ के माने ये हैं कि इंसान अपनी जात को खत्म कर दे। शरीयत वालों के यहां तो बहरहाल ये तकलीफ इतनी ही तक रही, ये तो कहने वाला रहा ना कि मैं फलां इमाम के कौल को मानता हूं, चलिए अपना ना रहा कौल, अपना तदब्बुर, अपना शुऊर, अपना ईमान ना रहा किसी की बात। अहले तरीकत आगे बढ़े तो उन्होंने तो लठ लेके पीछे पड़ गए, नफ्स खुशी खत्म ही कर दे, खुद ही खुदा नाल गैर, वो खुद ही के पीछे लठ लेके खत्म ही कर दिया जाए। उनके यहां मकाम सबसे बड़ा फना का मकाम, सारा कुरान इंसान की बका के लिए चल रहा है, सारा प्रोग्राम तमाम अमाले साले है वो इसके लिए है कि वो इस मौत के साथ कहीं ये ना समझे कि मैं खत्म हो रहा हूं, बाकी रहना है तूने। वो कहता है इंतहाई मंजिल इसकी ये है फना हो जाना, इशरत खतरा है दरिया में फना हो जाना। क्या बात है, इशरत से कतरा, यानी वो कतरा ही बाकी ना रहा तो वो इशरत किसकी है। आपने गौर फरमाया गीजा ने मान के कुरान बात तमसील की, वो कजुल मातिन कहता है, पहले कसर आदन कहा था, मिसाल है, लेकिन उस मिसाल के अंदर कितनी कितनी बड़ी अहम फलसफे की बातें कर जाता है वो। मैंने कहा था कि ये जुलमात जो है जुल्म वाहिद है, इसकी कुरान में कहीं नहीं आया, तो इसकी बुनियाद तो जुल्म वाद लाम मीम है। अगर के जुल्म एक अलग मौजू है, लेकिन बात क्योंकि आ गई है उसके मादे से, मैं अर्ज कर दूं कि मादे के एतबार से जुल्म के माने है कि जिस चीज को जहां होना चाहिए वो वहां ना रखी जाए। कहता हूँ इतनी जामे ये डेफिनेशन है, ये पता नहीं है अरब भद्दू कहाँ कैसे पहुंचे थे इन हकायक पर। जहां कोई शय होनी चाहिए वो वहां ना हो, एक तो ये चीज है कि एक चीज को बुलंद मकाम पे होना चाहिए उसको नीचे लगा दीजिए, ये जुल्म तो हम आप सब समझते हैं, ठीक है, उसको पस दर्जे पे ले आए, उसका जो सही मकान है उससे चीन के नीचे ले आए। कहते थे कि नीचे जिसको रहना चाहिए उसको ऊंचा कर देना, ये भी जुल्म है। और सुनिए कि वो क्या कहते, मैं अर्ज कहता हूँ कभी बाहर नहीं, क्या करूँ, हर बार यही मैं कहता हूँ, कभी फुर्सत होगी कभी मिसाल आएगा तो मैं बताऊंगा इन अरबों के हाँ के ये मादे के एतबारात से जो इन्होंने मानी लिए हुए हैं किस किस तरह इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ तो जालिम वो है ना जो फाड़ खाता है, ये जुल्म है। वो कहते थे मनिस्तर अज़ेबा फकद ज़लमा, जिसने भेड़िए के मुतल्लिक ये समझ लिया कि ये रेगुड़ का रिखवाला बनेगा वो जालिम है, ये जालिम है, क्योंकि इसने फाड़ खाने वाले को रखवाला समझ लिया। वो तो जालिम है ही जो चीज फाड़ खाने वाला है, जिसने इसे रखवाला समझ लिया वो उसे जालिम कहते थे, कि जो उसका मकाम था तूने उसको वहां नहीं रखा, दरिंदे को रखवाला बना दिया रेवड़ का, तो इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। देखते हैं ये जुबान और देखते हैं वो लोग जिन्होंने इस जुबान को बांध के यहां तक बुलाए, और फिर देखते हैं कि कुरान ने इस जुबान का इंतखाब क्यों किया था, इसके लिए कहां तक उनकी निगाह गई हुई थी, कहीं है इसकी और मिसाल मिलती है आपको कि भेड़ियों को रेवड़ का रखवाला बना देने वाला वो जालिम है, उसको रखवाला समझ लेने वाला जालिम है। कहा ये कि नूरे खुदाबंदी से इनकार का फिर नतीजा ये होता है कि इंसान जुलमात की तहों में रहता है, तय दर तय, सौ दर सौ, मौज दर मौज, तारीखियां ही तारीखियां, मी तराशिर फिक्र मां हर दम खुदा वंदे दिगर। ये हैं वो लोग, मेरी फिक्र हर वक्त हर दम एक नया खुदा तराश लेती है, रुस्त अज यक बंद का उस्ताद दर बंदे दिगर। एक बंधन कहीं कोई टूट जाता है तो वो एक और बंधन होता है जिसको होता है। और क्या, वो तो टूटी हुई जंजीर के टुकड़े होते हैं, निर्वाण अकीदत है उन्हीं को चुन के फिर से जंजीर बना के अपने गले में उसको डाल देता है। इनके नजदीक सबसे बड़ा मुल बेदीन जालिम फासिक फाजिल वो है जो इनकी पहनाई हुई जंजीरों को किसी तरह तोड़ने के लिए हाथ उठाए। यही जंजीरें जरा सी पुरानी हो जाती हैं तो फिर तकद्दस का हाला ओढ़ देती है, मुकद्दस बन जाती हैं हर पुरानी चीज। ये है जुलमात जिसके अंदर फिर ये लोग जिंदगी बसर करते हैं। आप देख लीजिए अजीजा ने मन, आसमानी अदायत को कुरान को छोड़ने के बाद अब दुनिया दो ही टुकड़ों के अंदर बढ़ चुकी हुई है। एक वो है तो जो शिद्दत जज्बात से शराब को चश्मा हैवा समझे हुए हैं, ये पूरी मगरब की दुनिया उस तरफ चली जा रही है। दूसरे वो हैं जो जुलमात तारीखियों तौब और तारीखियों के अंदर समुन्द्र की गहराइयों में पड़े हुए हैं और आसमानी रोशनी के सामने सहाब और घटाटोप अंधेरों की चादरें तान के रखी हुई है, तो जरा सी कहीं से एक किरण भी उन तक ना आने पाए। सारी दुनिया इन दो टुकड़ों में बटी हुई, मजहब परस्त दुनिया में कोई भी मजहब क्यों ना हो, हाँ उसका नाम आप इस्लाम रख लें, इस्लाम तो मजहब नहीं है, ये तो दीन है। मजहब परस्त सारी दुनिया इन जुलुमात में रहती है। दूसरा टुकड़ा जिसे आप सेकुलरिज्म वाला कहते हैं, वो शराब को अंदर रहता, और इसीलिए उसने कहा, मैंने कहा था ना कि आखिरी टुकड़ा आखिर में पेश करूंगा, वह मल लम यज अलिल्लाहु लहू नूरन फमालहू मिन नूर। अगर वो आसमानी रोशनी सूरज की नहीं आती तो फिर रोशनी कहीं भी नहीं मिल सकती। देख लीजिए सारी दुनिया आपके सामने है, बजा में खेस खुदा के मानने वाले भी और खुदा के मुनकर भी। अगर वो रोशनी नहीं है, कहीं और रोशनी नहीं मिल सकती। आगे चलिए, नूर खुदाबंदी के मुतल्लिक कुरान ने कहा था कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ध, अर्ध इंसानों की दुनिया थी, समावात खारजी जिंदगी। पहले उसने इंसानों की दुनिया को दिया और बताया कि वो इस नूर से इस्तेफादा करके इस रोशनी में अपना सफर तय करते हैं, वो किस कदर महफूज और मामून तरीके पर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। जो इस रोशनी से फायदा नहीं उठाते, वो या तो अपने जज्बात की शिद्दत के अंदर शराब को पानी समझे हुए होते हैं, या वो जहालत की तारीकियों में डूबे हुए हैवानात की सतह के ऊपर जिंदगी बसर करते हैं। इंसानी सतह उन्हें नसीब ही नहीं होती। ये थी इंसानों की दुनिया, उसने तो नूर समावात भी कहा है। खारजी दुनिया के अंदर खुदा का नूर, खुदा की हदायत, उसकी अनुमाई बराह रास्त हर शय के अंदर वदियत करके रख दी गई। वहां ये तरीक नहीं है हदायत देने का कि किसी एक रसूल या किसी एक नबी को वही के जरिए से ये हदायत दी जाए और वो नबी फरीजा रसालत की बिना पर इसे आगे इंसानों तक पहुंचाए और फिर इंसानों को इसका अख्तियार दे दिया गया है कि वो चाहे तो इसके मुताबिक जिंदगी बसर करे, चाहे इससे इनकार कर दे। उसके नतायज बताए हैं कुरान ने कि इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने से वो खुशगवार नतायज निकलेंगे, इसके इनकार से ये तबाहियां आएंगी। लेकिन खारजी कायनात में उसने ये कहा है कि ना तो ये नूर इस तरह से आता है जिस तरह इंसानी जिंदगी में आता है, किसी एक फर्द के जरिए से बाकी अफराद तक पहुंचता है। वो हर नौ के हर फर्द के अंदर वदियत करके रख दिया है, जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। हमारे यहाँ उसका दर्द न दुबिल्लत किया जाता है, न बदलने वाली चीज जिसे कहा जाता है, जबल की तरह। और दूसरी चीज ये है कि खारजी कायनात ने किसी को साहिब इख्तियार और इरादा नहीं बनाया कि उसका जी चाहे तो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करे और जी चाहे तो उसके खिलाफ वर्जी करे, ये नहीं है। अब ये समावाद के नूर में और अर्ज के नूर में ये बुनियादी फर्क आ गया। अर्ज का नूर जो था पहले, उसके मुतल्लिक ये कुछ कहा कुरान ने, अब समावाद के नूर की तरफ आया। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज, इंसान के अलावा बाकी अशियाए कायनात जो हैं वो अर्ज की बुलंदियों में हो, इन कुर्रों के अंदर हो, कुर्राए अर्ज के अंदर हो, उनके अंदर नूर की कैफियत क्या है, युसब्बिहु लहू। मैंने कहा है ना कि हमारे यहाँ के जो तर्जुमे हैं वो जुलमात की इतनी बड़ी बड़ी तहें आ जाती हैं, तर्जमा फिर तफसीर फिर उसके बाद हाशिए, तह तह पर तह जुलमात होता है, असल हकीकत तक वो पहुंचने ही नहीं देते। तब्बा कहा तस्बीह की तरफ निगाह गई, तस्बीह कहा और वो फिर मन के फेरने वाली बात आ गई, वो एक लफ्ज को गिन गिन के दोहराया गया, सौ बार दोहराया, फिर वो हजार दाने की भी तस्बीह होती है, हमने दस हजार दाने की तस्बीह भी देखी है, ढेर लगा हुआ होता है इतने बड़ा जैसे सांप बैठा हुआ हो, जिनके इतनी दफा कहा गया अल्लाह अल्लाह। मैंने एक से कहा था कि सबसे ज्यादा तो ये जो फकीर मांगने वाला होता है, अल्लाह के नाम के अल्लाह भला करेगा, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह कहता चला जाता और भीख मांगता चला जाता। अगर इस दफे अल्लाह को दोहराने से ही ये सब कुछ हासिल होता है तो इससे बड़ा तो अल्लाह का नाम दोहराने वाला कोई और है ही नहीं। तो टुकड़ मांग के खान सारे तस्वीर फेर मारे का यही हाल। पूछो इन दुकानदारों से कि तुमने ये लफ्ज का जो कॉइन किया काहे के लिए कोई? उन्होंने ये कॉइन किया था कि जितनी तवानाई किसी के अंदर है वो पूरी की पूरी सर्फ करके किसी मकसद के हसूल में सरगर्दा रहने के लिए सीन दे ही का लफ्ज बोलते थे। पूरी तवानाई, घोड़े की वो चाल जिसमें वो पूरे दोनों पांव फैला के आगे फेंकता है, वो उसे वो कहते थे तस्वीर। वो तैराक जिस तैराकी में वो पूरा हाथ बाजू यूं करके जिसमें वो तैरता है पूरे बाजू के साथ, अगर तैराकी की दूसरी किस्म है जिसमें वो ये नहीं करता तो उसके लिए ये लफ्ज नहीं आता। तो उनके यहाँ तो एक एक चीज के लिए सौ सौ लफ्ज होते थे। ये जिसमें वो पूरा हाथ पहले वो थी तस्बीह, जिसमें वो घोड़ा पूरे दोनों पांव अपनी टांगे आगे फैला के भागे वो थी तस्बीह। उसने कहा कि खारजी कायनात की हर शय उस प्रोग्राम की तकलील के लिए लहू, बड़ा अजीब लफ्ज है, खुदा के मुतय्यन करता प्रोग्राम की तकलील के लिए सब पूरी पूरी तवानाइयां सर्फ कर रही है। एक दस में क्या बात में कह जाता है? उतार जरा देखो इन परिंदों को तो देखिए आप, यानी वैसे उस परिंदे को कभी तोल के देखिए और खुदा ने यूं उसी तरह से पार बांध के छोड़ दिए वो ठहर ही नहीं सकता, वो हवा से भारी होता है, लेकिन उसके बाद पर फैलाए हुए उसको देखिए, सारा सारा दिन वो इस हवा में उड़ता रहता है और उसके अंदर वो जो वदियत करके रख दी गई है शय अपनी मंजिल को पहचानना, उड़ता है वो इस फजा के अंदर जहां किसी सड़क का सड़क के निशान का होना तो एक तरफ कहा, कोई रोखी नहीं होता, कोई समती नहीं होती फजा के अंदर, मीलों निकल जाता है इसके अंदर। कभी कोई परिंदा उसके बाद शाम को वापसी के वक्त अपने घोंसले को नहीं बोलता, वो कौन सी रहनुमाई है उसकी जो वहां ले जाती है? ये है वो नूरे खुदा बंद, कभी गलत रास्ते पे वो नहीं चलता, सही रास्ते के ऊपर फिर वहां आ जाता है। इकबाल ने खुदा की रहनुमाई में चलने वाली जो कौम उम्मत थी उम्मत मुस्लिमा उसके मुतल्लिक कहा था ना कि परत दर वसत गर्दू जगाना, ये आसमान की फलाह में सदा में कहनाइयों में उड़ती है जगाना, मोमिने बालाए हर बाला तरे गैरते वर्ण ताबद हमसरे वंतुमर आलाउन, मोमिन तो हर बुलंदी पर उड़ने वाले से ज्यादा बुलंद मुकाम पर होता है। ये तो एक तरफ रहा कि कोई उससे आगे बढ़ जाए, उसकी गैरत इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके साथ पूरे हम दोष हो जाए उसके, इसीलिए कहा कि परत दर वसत गर्दू जगाना, तनाव उसमें उड़ता है लेकिन निगाह ऊब शाखे आशियाना अपने आशिया को नहीं, उसकी निगाह जो है सैकड़ों मीलों के फासलों के फासले से भी कुछ आशियाने के ऊपर निगाह रहती है। ये तो इंसान का बच्चा ही अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है बाजी मेरी अम्मी, यही वो अपने घर में रास्ता नहीं जानता, सॉरी बच्चे की बात पे तो हंसे, अपने आप पे हम नहीं हंसे, हमें अपना घर कभी याद ही नहीं आता सारी उम्र, वहां के कुरान कहता है कि ये क्यों है इनके यहाँ, इसलिए कि कुल्लुन कद अलेमा सलातहू व तस्बीहहू, इनमें से हर एक अपनी अपनी सलात को और अपनी अपनी तस्बीह को जानता है। सलात तस्बीह को देखते हैं सलात का लफ्ज कहाँ आ रहा है। सलात है ये, सलात के माने होते हैं फराइज नमाज, कानून के इत्तेबा। इनमें से हर एक जानता है कि मेरा फरीजा मंसूबी क्या है और उस फरीजे के हासिल करने के लिए मुझे किस तरह तवोताज करना है, सरगर्दा रहना है, वो दायरा अमल मेरा कौन सा है। इनमें से हर एक इसे जानता है, अपनी सलात को भी जानता है, अपनी तस्बीह को भी जानता है। अब इस सलात को आप ठीक है तर्जुमा करके और इसका मफहूम सिर्फ ये नमाज ले लीजिए तो इतनी सी बात हो गई जो मस्जिद की चार दीवारी में जो आप करते हैं। ये जो उसके बाद आपकी जिंदगी का इतना लंबा चौड़ा दायरा है उसके अंदर फिर सलात नहीं आती है, तस्बीह तो उससे भी सिमट जाती है, गोशे में बैठ के तस्बीह करते हैं। लेकिन सुना ये है कि वहाँ अरब के अंदर या शायद के अंदर उन ममालिक में उनकी कैफियत ये है कि वो तस्बीह जो है वो गोशे में नहीं करते, जैसे छड़ी हाथ में होती है इस तरह से तस्बीह हाथ में होती है। झूठ बोले जाएंगे, फरेब दिए चले जाएंगे, तस्बीह पे घटाघट होता चला जाएगा ऑटोमेटिक, उसने सेल लगा रखा होता। ये तस्बीह मस्जिद की चार दीवारी के अंदर कुछ रखते हैं वो सलात। और फिर मजहब की दुनिया है ना, हमारे यहाँ एक लोग आए, उन्होंने कहा हम अहले कुरान हैं, माँ हसन उनकी सारे तवताज का क्या कि नमाज तीन वक्त की है पांच वक्त की नहीं है, ये बस अहले कुरान हो गए नमाजों का वक्त बताने के लिए, सलात का मफहूम बताने के लिए नहीं। मजहब में होता ही है फिर हरकात और सकनात जो महसूस और मरी होती हैं बस वहां तक निगाह जाती है, मफहूम और मकसद की तरफ निगाह उठती नहीं। पूछो तो सही कि ये कद अलेमा कुल्लुन कद अलेमा सलातहू, इनमें से हर परिंदा हर शेख हर उसकी अपनी सलात जानती है। पूछो इन्होंने से किनिया रकात पढ़ते ने सारी जिंदगी इनकी। मैंने कहा ना कि पूछी ही नहीं, मैं तो खून के आंसू होता हूँ जब ये चीज देखता हूँ कि खुदा खुदा करके कोई उठे जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ कुरान खालिद को मानते हैं। कुरान खालिद को मानने वाले सारी उम्र इस बात के अंदर गुजर गई कि पांच नहीं तीन हैं, दो रकतें हैं, एक रकत में एक ही सजदा है, इसी बात में सारी उम्र गुजर गई। और पांच पढ़ नल जो कुछ उतरा सी या तीन पढ़ नल की समझ गया तो फिर इन्हें दो ज्यादा ही पढ़ते सन ना, घटते नहीं सी पढ़ते। चलो जिड़िया दो ने तुझे तीर दे दो तीन तो बाकी रही है, कहना के जी नहीं पांच पढ़न नाल मुसलमान नहीं रहे। यानी क्यों ना बीनंद हकीकत रहे अफसाना जन्म, कुरान की तरफ आने वाले के लिए जरूरत थी वो बताता कि नमाज और सलात में फर्क क्या है, सलात का नतीजा क्या है। कुरान कहता है कि सलात जो है फाशा और मुनकर से रोक देती है, ये बताना चाहिए था कि वो कौन सी सलात है जो कुरान की रूह से बुराइयों से फाशाओं से बेहयाइयों से मुनकरात से रोक देती है। तो उन्होंने कहा कि पांच पढ़ो तो फिर कोई बुराइयों और राइयां आम हो जाती हैं, तीन पढ़ो तो फिर उनसे ये रोक देती। मजहब में ये बातें चल निकलती है, अजकार सलात उसमें साहब ये तस्बीह ना पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो, यू अलहमना पढ़ो, यू पढ़ो, भाई इस पढ़ो के अंदर चला जाता है। ये रकते हैं दो, ये सजदा है, इसमें करना ये चाहिए, वक्त इतने है। माँ हसल उस सलात का भी वही जो उस सलात का, वही देरी ना बीमारी, वही नाचार की दिलती, इन चीजों से इसलाह होती है। ये तो फिर मजहबी का एक टुकड़ा हो गया, कुल उनका डाले ना सलात हुआ तस्बीह वल्लाहु अलीम बिमा यफ़अलून। اور خدا پھر جانتا ہے, اس کی نگاہ ہے, اس کے علم میں ہے یہ چیز کہ کس نے کیا کرنا ہے. اسی مرغی کے نیچے جیسا میں مثال سے کہا کرتا ہوں, انڈے رکھ دیجئے, مخلوط بطخ کے بھی رکھ دیجئے, مرغی کے بھی رکھ دیجئے, اس میں سے اپنے وقت کے اوپر دونوں انڈوں میں سے چوزے نکلیں گے. مرغی کا چوزہ پانی کی طرف سے بھاگ کے خشکی کی طرف ماں کی طرف آئے گا, بچ کا بطخ کا چوزہ انڈے میں سے نکلتے ہی خشکی سے دوڑ کے پانی کے اندر چلا جائے گا. ان کے سارے ابتدا کے پیدائش کے ساتھ سے ہی یہ نور خداوندی کا اتباع کرتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, وللہ ملک السماوات والارض والیہ المصیر. یاد رکھو, قانون تو خارجی کائنات ہو یا انسانوں کی زندگی دنیا, اس میں قانون تو خدا ہی کا قانون ہے, وہ تو خدا کے سوا کسی دوسرے کے قانون کا اتباع نہیں کرتے. انسان یہ کچھ کرتا ہے اور اس نے کہا یہ کر کے دیکھ لے, ہر طرف سے ناکامیوں, نامرادیوں, تباہیوں, ہلاکتوں کے بعد اس نے ادھر آنا ہی ہو, اس کے سوا چارہ نہیں. اور مثال خارجی کائنات کی طرف آ رہا ہے نا قرآن. یہاں تو وہ مثال دی تھی, اس نے پرندوں کی مثال دی تھی یا بہت حیوانات کی مثال دی تھی. الم تر ان اللہ یجزی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الغدق یخرج, یا بہت حیوانات کی مثال دی تھی. الم تر ان اللہ یجزی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الغدق یخرج من خلاله وینزل من السماء من ماء فیہا من برد. کہا ذرا دیکھو تو صحیح, یہ ہمارا نظام واٹر سپلائی. قرآن نے کہا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی, زندگی کا مدار پانی پر. اب یہ کائنات اس نے بنائی, مثلا کرہ ارض کے اوپر اس نے تمام جاندار پیدا کیے, اسی میں انسان بھی ہیں. پانی جو یہاں اس رکھا وہ ہے سمندر کا پانی. اچھا بھلا ہے گھونٹ پی لے, موت واقع ہو جائے یا بیماری تو ضرور آ جائے, تو پانی تو یہ تھا. اب زندگی عطا کی ہے, پانی اس قسم کا ہے. دوسرے انتظام تو چھوڑ دیجیے, جو اس کو ساتھ ملا ہے قرائے عرض کے اوپر, وہ تو یہ پانی ملا. اس نے کہا تھا کہ ہم صرف خالق ہی نہیں ہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا, رازق بھی ہیں. جس سامان پہ زندگی کے سہارے ہیں وہ سامان ہم دیتے ہیں. پہلا سامان میں سے ذریعہ جو ہے وہ پانی کا. کہا دیکھو کہ اس کا انتظام ہم نے کیا کر رکھا. اسی کھاری سمندر سے جو پانی وجہ ہلاکت ہے, ہمارے سورج کی کرنیں, تمہارا کچھ اس میں دخل نہیں ہے, ہمارا نظام دیکھیے. ہمارے سورج کی کرنیں ڈسٹلڈ واٹر جو ہے اس میں سے کشید کیا ہوا پانی ڈول بھر بھر کے اوپر لے جاتی ہے. پانی تو ہوا سے بھاری ہوتا ہے, جا ہی نہیں سکتا اوپر. زورے درو سے فوارے کے اوپر لے جائیے, جب بھی وہاں سے نیچے کا زور ختم ہوگا وہ پانی نیچے آ کے رہے گا. تو اگر یہ پانی کی شکل میں اوپر جائے تو وہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. کہا اس شکل میں جاتا ہے تو ہوا سے بھی ہلکا ہوتا ہے. اوپر جاتا ہے تو الگ الگ حصے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو چلاتے ہیں تو وہ ساتھ ملتا ہے تو زیادہ بدیب اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد آگے جاتا ہے تو اس مقام پہ جس پہ وہ فطرت کا قانون ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک اتنی ہوتی ہے, کچھ وہ پہلے بھاری ہو سکتا ہے. یہ جو چیز اس نے کہی جو اللہ ہو بہنا ہو, ایک اس اندر مطمئن ہو جانا. جماعت مومنین کی یہ صفت بتائی تھی نا, اللہ کا بہنا قبول کر سکوں. جماعت مومنین کے افراد کے دل آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں ملا ہو. وہاں یہ بھاری ہو جاتا, ٹیمپریچر ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر تو پانی جو ہے بھاپ بنتا ہے, ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر پانی بھاپ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے, ہوا سے بھاری ہوتا ہے وہ نیچے اترتا ہے. کہا یہ تو وہ ہو گیا کہ ایک دم سے بارش ہو گئی, اتر گیا اوپر سے وہ, پھر बादल उस वक्त खत्म हो गए तो फिर उसके बाद पानी की जरूरत है। ये मुस्तकिल वाटर सप्लाई क्या है? कहा उसके बाद उसी में से हमें एक हिस्सा जो बाकी होता है पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर बर्फ की शक्ल में रख देते हैं, परमानेंट रिजर्वायर, ओवरहेड वाटर टैंक, कि जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं, गर्मियां आ जाती हैं, पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वही हमारा सूरज जो समुन्द्र से इस तरह से उड़ा के ले जाता है, वो इस मुंजमन पानी को पिघला के पानी बना के तुम्हारे ले आता है आगे। और ऐसा साफ और शफाफ पानी तो कहीं मिलता ही नहीं। ये डिस्टिल्ड वाटर की इतनी सी वो होती है, कीमती जी मिलते हैं, ड्रग्स देते हैं, पता नहीं कितने पैसे नहीं देने। डिस्टिल्ड वाटर चला तुम्हारे हर घर के सामने से, जिसे उसने सेल्फ डील कहा है। रास्ता चलता जाता है, सल आवाज देता जाता है कि जिसको जरूरत है आ जाओ, पढ़ लो अपना डोज दही, लाओ अपनी बेटी दही। क्या बात है, खुद पूछता जाता है, कहना कोई पानी की लोड़ तो नहीं आगी। कबीर चलता फिर इसमें से वो गायब जो होता है, नहाते हो धोते हो पानी जाया कर देते हो, कहता वो जाया करने वाली बात नहीं है। वो फिल्ट्रेशन के जरिए से दूसरा अमल होता है ना, एक तो कशीद का होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के जरिए से हम जमीन के नीचे उसको ले जाते हैं, तुम तो उसको फेंक देते हो, अभी तो अडोलीफाम लेने है, फिर वो वहां जमा कर देते, वो महफूज रहता है ऊपर की तमाम कसाफतों से, गलासतों से, ठंडा रहता है हरारत से। जब जी जाए फिर तुम्हें कुछ खोदना पड़ता है, सिर्फ फिर उसमें निकालते चले जाए। कहता है न समुन्द्र का पानी इनकार करता है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, ना वो जो किरणें ले जाती हैं वो उनको अपने लिए संभाल लेती हैं कि साहब अभी दुए नहीं पहुंचे, ये सारे घर के ना रख लो पर्सनल प्रॉपर्टी, वो नहीं जमा करके रख, आगे चला देते। फिर वो बर्फ पड़ती है, बेरस में आ रहे थे पानी, बर्फ की शक्ल में होता है, वो वहां चंगल मार के पहाड़ में अपने लिए रख देता, आ जाता है, जो चला आता है वो जो जायद होता है वो जायद फिर संभाल के रख लिया जाता है, जिस वक्त जहां से जिसका जीता है फिर वहां से निकाल ले। नहीं मंगे साओ वह यासरे तो हुए। अब यहाँ ये सूरत है कि अब तुम्हारा मकाम आया, तुमने से जो चाहे उससे जो फायदा उठा दे, जो चाहे रू कुर्बानी कर दे, अब पानी उसके मुंह में खुद नहीं जाएगा। क्या बात, यकाद व सना बरते ही जब हो बिल अच्छा, और तुम्हें बादलों में से वो बिजली चमकती है। तुम तो यही समझते हो, जो गलती करते हो कि ये आंखों को उचित के ले जाने वाली है, तुम्हें पता नहीं कि इसके अंदर कितनी तवानाइयां मौजूद हैं। आज वो तवानाइयां जो है उसको मुफक्कर कर रहा है इंसान। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है पूछो नहीं, उसने तूफान बर्पा कर दिया, इंकलाब बर्पा कर दिया दुनिया के अंदर। इसकी ओरिजिन तो वो थी ना फ्रिक्शन से जो पैदा होती है। कहा और आगे बढ़िए, युकल्ले बुल्ला हुल्लैला वन्नहार, दिन को उलटते हैं तो रात आ जाती है, रात को यूं उलट देते हैं। अंदाजा लगाइए कुर्राए अर्ब की गर्दिश से रात और दिन के इख्तलाफ का नाम इंकलाब या तकलीफ या उलट देना रखना, यानी ये जमीन के यूं उलटने से ही है ना दिन और रात का इख्तलाफ नजर आ रहा है आपको। और उलटना ऐसा जब पता ही नहीं चलता ऊपर वालों को या नीचे वालों को, तो ये किस वक्त ये इंकलाब आ गया। जैनी इंकलाब ऐसे ही आया करता है, वो तो फसाद होता है, आता कुछ नहीं है, दुआई नहीं पहुंचाया। जो कल्ले बुल लैलुमन, और ये कुरान करीम ने ये सदा से लैलुनहार को मेरा आयातुल्ला कहा है, ये बड़ी अहम चीज है। फिर मैं अर्ज करूंगा कि मैं क्या इस वक्त समझाऊं, टाइम या जिसे वक्त कहते हैं, जिसे जबान कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, हम तो समझ ही नहीं सकते इसको, लेकिन ये वक्त के मापने का पैमाना होता है। आज जुमा हो गया, 25 तारीख हो गई, कैसे हो गया? कल रात तक दिन रात थी, हमने कहा था कि रात भर में आने आ गई, उसके बाद फिर अगली सुबह हुई जिसे हम कहते हैं अगली सुबह, ये दरमियान में रात आई है तो अगली सुबह है ना, रात ना आए अगली सुबह ही ना आए। दूसरा दिन ही ना चढ़े, तरीफ ही ना बदले, ना ही तुझी होर ना रख सकते। कितना आसान कर दिया इस चीज को, मैंने कहा ना जरा मुश्किल मसला है, जेन में अगर आप जोर दे ले और सोचें कि अगर ना हो दरमियान में ये दिन और रात, तो وہ کیفیت کیا ہو ہماری, سارا کاروبار ہی رک جائے, یہ گنتی نہ رہے ٹائم کی آپ کے یہاں. اور اس کے بعد برگسان سے پوچھئے کہ یہ جو ہے درمیان میں یہ چیز جو کہہ دی کیا ہے, یہ بہت بڑا ٹائم, ایک بہت بڑا فلسفے کا مسئلہ ہے. جن کے یہاں ایک ہوتا ہے ڈیوریشن لیس ٹائم, وہ وقت کے جس کے اندر یہ ڈیوریشن نہیں ہوتی, ایک گھنٹہ ہو گیا, دو گھنٹے ہو گئے, بارہ گھنٹے ہو گئے, دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ وہ ہے. مثلا رات کو آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے اس کے اندر. یا غشی کے عالم میں چھ چھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں, جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. وقت گزر گیا ہوتا ہے, ڈیوریشن نہیں اس میں محسوس ہوتی. لیکن برگسان کی یہ اصطلاح ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اس ڈیوریشن لیس ٹائم کے گز کے گرہوں کے نشان لگا دی ہے جس سے ماپا جاتا ہے. اور وقت کا ماپنا جو ہے اسے وہ سیریل ٹائم کہتے ہیں, ایک لائن کے اوپر نشان لگائے ہوئے. کہا یہ نشان جو لگے ہیں وقت کے گز کے اوپر, اس سے یہ سارا حساب کتاب کا دنیا, انسان کی تمدنی دنیا کا دار و مدار ہے اس گنتی کے اوپر. آپ غور کیجئے درمیان میں اگر یہ کہیں گنتی نہ آئے, دنوں کی, تاریخوں کی, وقت کی, مہینوں کی, سال کی, کوئی کام ہی نہیں چل سکتا. وہ کہتا اس نے, یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اس نے کہا ہے کہ یہ جو خدا نے دن اور رات کو من آیات اللہ کہا ہے, یہ بڑی چیز ہے. یہ اختلاف لیل و نہار ہے جس سے ڈیوریشن لیس ٹائم سیریل ٹائم بن جاتا ہے. ہم کیا سمجھیں گے کیا کہہ گیا یہ کلے گلہ لیل و نہار, اور کاہے کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لعبرت للابصار. کہا یہ چیز آتے ہی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دن آ گیا, یہ رات آ گئی, اس کے بعد پھر اور دن آ گیا. عبرت کہتے ہیں کسی ایک محسوس شے کے اوپر کھڑے ہو کے بڑی حقیقت تک پہنچ جانا. یہ پن کو عبور کرنا آپ ہے نا, یہ وہی سے ہے. یہ اگر آپ پن کو کہتے ہیں, پن کیا ہوتا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے دریا آ جاتا ہے, آپ ادھر کھڑے ہوئے ادھر جا ہی نہیں سکتے, درمیان میں ایک حدِ فاصل سی آ جاتی. اب اس کے اوپر پل بنا دیا جاتا ہے کہ جس سے آپ یہاں سے وہاں پہنچ گئے. جہاں پہنچنا ہے آپ نے, ادھر سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے یہ عربی زبان ہے ان عربوں کی, یہ اس سے انہوں نے یہ عبرت کا لفظ لگا لا, جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک محسوس واقعہ جو آپ کے سامنے آئے, اس پہ غور کر کے اس حقیقت تک پہنچ جائیے جس کے لیے وہ واقعہ آیا. اسے عبرت کہتے ہیں. پل درمیان میں کہا یہ جو چیزیں ہم بیان کر جاتے ہیں کہ دن اور رات کی گردش بھی خدا کی آیات میں سے ہے, یہ عبرت کی بات ہے. یہ بجائے خیز کوئی مقصود ذات چیز نہیں ہے. اس پہ تم غور کرو گے تو ایک بڑی حقیقت تک پہنچو گے. کون پہنچے گا؟ جو کلین ابسار, جو آنکھیں کھلی رکھے گا, وہی دن اور رات کا اختلاف پہچانتا ہے. کیا بات ہے ابسار کی؟ یہاں اندھے کو کیا پتا ہے کہ دن کب چڑھا اور رات کب آ گئی؟ عبرت کلین ابسار. واہ, جو مثال رات اور دن کی دی ہے عزیزان من, اس مثال محسوس مثال میں بھی جو آنکھیں بند کیے ہوئے اندھا ہے اس کو نہیں فرق نظر آ سکتا. کہ جائے کہ اس محسوس مثال سے بسیط حقیقت تک پہنچنے کے لیے, وہ کہتا ہے جو آنکھیں بند کرتا ہے اصل و فکر کی, اس کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. یہ عبرت ہے, عبرت کا. اگر اسی کنارے پہ کھڑا رہے پل کے, ساری عمر بھی اگلے کنارے پہ پہنچ سکتی. عبرت کی یہ کام کرتی, عبور کر رہتا ہے انسان راستے کے موانے کے. جس میں عبرت ہے لے اولی الابصار. اور کہا یہی پانی جو ہے, واللہ خلق کل دابۃ من ماء, 1400 سال پیش تک, اس زمانے کو ہی آج کے زمانے کے مقابلے میں ادھار پیش کرتے ہیں. اس میں عرب جو ہے وہ خطہ ہی عرب ایسا ہے جس میں لکھنے پڑھنے کا سوال ہی نہیں تھا. ایجوکیشن تو بڑی چیز ہے, لٹریسی, یہ لکھنا پڑھنا جسے آپ کہتے ہیں, نوش تو خان وہ کہتے ہیں نا کہ مکے کے اتنا بڑا شہر جو مرکزی مقام تھا, اس میں بھی ظہور اسلام سے پہلا 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. यह उस कौम ने ये की कि जिंदगी की इब्तदा पानी से हुई। यहाँ पहुंच के 18वीं या 19वीं सदी में, 18वीं में कह लीजिए अगर कहते हैं आप डार्विन से, जब ताकीद हुई है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है, तो वहां से ये बात कहती है ना कि पानी से इसकी इब्तदा हुई। पानी में जब ये मिट्टी मिलती है, आप उसमें कोई ऐसी शय जिसमें लाइफ नहीं होती, वो शय जब पानी के साथ मिलती है तो तीन लाजिब बनती है, चिपचिपी मिट्टी। उसको जब हरारत पड़ती है तो उसमें से जब सूमा एक निकलता है, वो लाइफ की पैदा होती है। वो 1400 साल पहले कह रहा है कि हर जी हयात जो है उसकी पैदा जिंदगी की पानी से हुई। आज भी आपको मालूम है, ये चांद पे जाते हैं, मरीख पे जाते हैं, वहां से जो मिट्टी खोद के लाते हैं और चीजों के अलावा देखते क्या है, ये इन्होंने देखना है कि वहां जिंदगी है, कोई शह जिंदा है, तो उसके लिए क्या देखते हैं, टेस्ट क्या करते हैं। अगर उस मिट्टी में नमी है तो ये कहते हैं वहां जिंदगी हो सकती है, नमी नहीं है तो कहते हैं छोड़ दीजिए जिंदगी नहीं। कुरान 1400 साल पहले कहते हैं तो जिंदगी जो थी उसकी इब्तदा तो हमने पानी से की। दाब बातें हर जी हयात चलने वाला दाबा में सब आ जाते हैं। वमिन हम नहीं यमशी अला बस नहीं, वमिन हम नहीं यमशी अला रिजलैन, वमिन हम नहीं यमशी अला अरबैन। तो देखो फिर उसके बाद जिंदगी की इब्तदा एक बरसूमा हयात से हुई, जो बाहर नेकेड आई से नजर भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना पड़ता है। कहा यहाँ से उसकी इब्तदा होती है, वो बिल्कुल एक दफे और बरसूमे होते हैं, कहता आगे देखिए शाख दर शाख जब जिंदगी हुई तो उसी में से दो पंचों वाले, रिंग कर चलने वाले, उड़ने वाले, चौपाए, दो दो पांव वाले, ये सारे उसी एक जरसूमे से निकलते चले आ रहे हैं। कहा ये है उसका कानून, ये इसलिए ये कुछ बन रहे हैं कि कोई उसको डिफाई नहीं इनमें से करता, कुफर इख्तियार नहीं करता इनमें से कोई भी, ये सब मोमिन होते हैं। ये खुदा का कानून नशीयत है जिसके मुताबिक ये तख्लीक होती चली आती है। लेकिन वो फिर ये नहीं है माज शाह कहने के बाद कहा तो ठीक है, हम कहते हैं भाई वो दो बतावा बन जा, इतना वाला बन गया, चल देगा तू चार वाला बन जा, तो देखे मजारी बजू बच्चू कटता हूँ तो नहीं कर दिया, तो दो लता होंगी तेरे हम कर दता वाला आ जाता है, चार चार लटा रखी होती है। वो ये बात नहीं है कि हम भी करते हैं दो टांग वाला हो जाता है, हम भी करते हैं चार वाला हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, माँ ये शाह से ये ना समझ लेना तो यूं ही अगर हम कह देते हैं तो ये हो जाता है। अल्लाह रात तुमने शहन कबीर हार क्या कहता है, माने और पैरों में कर दिए हुए हमने। और इन सब कुछ कहने के बाद कहा लकद अंजलना आया तुम मुबैना, देखो किस किस्म के रोशन दलायल और रोशन कवानीन हमने दिए हैं। खुद मुबैना, खुद रोशन और रोशन करने वाली, खुद वाजिया और हर चीज को वाजिया करने वाली, ये हमने नाजिल की है। तो नूर की यही कैफियत होती है, नूर खुद रोशन होता है, वो किसी खारिज से किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। कभी जलते हुए बल्ब ने यह नहीं कहा कि अंदरों मोमबत्ती ले आना, देखिए बल्ब कितने आ गया, एक लस के अंदर क्या बात रख जाता है मुबीन के अंदर, खुद रोशन है और जो खुद रोशन है हर शय को रोशन कर। ये है जो हमने आयात भेजी और जो कहा था कि हदायत देते हैं, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अब उसके बाद फिर वही दर्द कि वो जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत दे देता है, यानी ये रोशनी तो फैला रखी है उसने, आम कर रखी है। आयात मुबैनात हैं, वाजिया रोशन रोशन करने वाली, ये सब कुछ भी है, इंसान को आंखें भी देती हैं। और उसके बाद फिर ये है कि सीधे रास्ते पे जिसे हम चलाते हैं वही चल सकता है, सारा स्यापा का ही लिखी यानी अगर आखिर में बात अगर यही होनी थी कि वही सीधे रास्ते पे चल सकता है जिसे हम चलाएं, तो ये कैफियत तो अंधे के मुतल्लिक होती है ना, उसकी तो आंखें नहीं होती है, बाहर की रोशनी से कोई काम नहीं देती, उसे आप चलाएंगे तो वो चलेगा, आप नहीं चलाएंगे वो नहीं सही रास्ते पे चलेगा। तो अंधे के जब पैदा ही किए अंधे सारे, तो फिर रोशनी काहे के लिए पैदा करते, गौर कीजिए आप, अंधे के लिए तो रोशनी की जरूरत नहीं, बेकार है, वो खुद नहीं चल सकता रोशनी में, उसे कोई दूसरा चलाता है। और अगर यही बात है कि फिर हम जिसे हम चाहते हैं उसको हम चलाते हैं सही रास्ते के ऊपर, तो उसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं। कहा ये सारा कुछ हमने दे दिया, पैदा कर दिया, अब इसमें से जो चाहे सही रास्ते के ऊपर चले, जो चाहे गलत रास्ते, पता फिर सही रास्ते पे चलना और बात है, वक्त भी बनते हैं। आप बात चलने की है रास्ते के ऊपर, अगर कैफियत ये हो कि चौराहे के ऊपर खड़े होके आप कहें ये कि ये ठीक रास्ता शहर की तरफ जाता है, ये रास्ता शहर की तरफ जाता है, हम इकरार करते हैं कि यही सही रास्ता है जो उधर जाता है, और उसके बाद अब चले तो गुलमर्ग की सड़क के ऊपर चलने में, कहते बताओ किसे ये सिराते मुस्तकीम क्या फायदा दे, आ गया वो हमारी तरफ। वो जो कूलू ना आमन्ना बिल्लाह व बिर्रसूल, बात आ ना जो कूलू ना जुबान से ये कह जाए, खुदा पे भी ईमानदार है, रसूल पे भी ईमानदार है, वाकई हम उसकी अकायद भी करते हैं, जो कूलू ना कह जाते हैं, सुम्मा यतवल्ला फरीक मिन बाद ज़ालिक, और उसके बाद दिल्ली में कहो विरोध तुम देखो, तो वो एराज बरतता है, रू गर्दानी करता है, या तो वल्ला है इसमें कुफर नहीं, कहता चला जाता है और वो दूसरे रास्ते के ऊपर चलता जा रहा है, कहे चला जा रहा है कि हम उसके तरह मुस्लिम के ऊपर ईमान है हमारा कि सीधा रास्ता उसका ही बताया हुआ है, ईमान है हमारा, हम कहे चला जा रहा है जुबान से तस्वीर फेरता पुरे जानता या तो वल्ला इराज बरसता है, ग्रेज की राहें निकालता है, अजीब चीज है, कुफर से अलग चीज है, वह माउल है सब मोमिन, कहता चला जाता है आमन्ना, वो कहता है नहीं मोमन, मोमन सिर्फ कहन वाला नहीं होता, मोमन पे करने वाला होता, इसीलिए उसने यहां गया यकूलूना कहता है, वो कहता है कि बेमा तो कूलूना माला था फजून, वो करते नहीं हो कहते ही क्यों हो, कहते अगर कहे नहीं तो फिर काफिर बन जाए, कहने इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ना के ये देखिए मुसलमान किसान रहेंगे, कहता है लेमा तो कोई लूना माला था आपको पता नहीं है लेमा क्यों कहते हो, कहते इसलिए कहते जो कूलू ना आमन्ना बिल्लाह व बिर्रसूल व अताना सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम बादा मा उलाइका बिल मोमिनून, कहा क्या हमने कहा तवल्ला रूगरदानी करते हैं, इराद करते हैं, ग्रेज की राहें निकालते हैं, वो एक सीधा रास्ता, ये एक ये बीच में से जो पगडंडी यूं निकल जाती है ना, ये होता है तवल्ला। कहा टेस्ट क्या है इसका, कहा टेस्ट कहा वह इजा दो अल्लाह व रसूल ही ले यहकुमा बैना हूं, टेस्ट ये है ईमान का कि तुम्हारे जितने भी अपने इख्तलाफी मुतनाज़े थी जितने मामलात हों उनमें फैसला कराओ तुम खुदा की किताब से, ये है ईमान। ये लफ्ज गिनने के लिए नहीं दिए, ये जुबान से दोहराने के लिए अल्फाज नहीं दिए, ये है कुफर और ईमान का दुम प्याज मन दम या तुम बिना अनजल्लाए का हम उनका फिर जुबान से कहते चले जाइए खुदा पे ईमान, रसूल पे ईमान, किताब पे ईमान, अगर इस किताब के मुताबिक हुकूमत खान नहीं होती, फैसले इसके मुताबिक नहीं होते, इसी को तो कहता इन्हीं को तो काफिर कहा जाता है। आज ये जब उनको बुलाया जाता है खुदा और रसूल की तरफ काहे के लिए ले याकुमा बहना हूं अपने मामलात के फैसले के इजाफरी को मैं नदून, वो उसने इराज बरतते हैं, गुरेज की राहें निकालते हैं, अदालतों में जाके देखिए गुरेज की राहें, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی فیصلہ شریعت کے مطابق چاہتے ہو یا رواج کے مطابق؟ کبھی ساڈے تو رواج کے مطابق کہ بزرگوں سے ہی تریا ہوں چلیے. اب اس کے بعد ذرا سی جھجک پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, شریعت کے مطابق بھی کہہ دیجئے, یہ بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی کے اندر عرف جو ہے جسے آپ رواج کہتے ہیں یہ ایک حکم شریعت کا جز گنا جاتا ہے. رواج کے مطابق فیصلہ فقہ حنفی کی روح سے شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں لا تو بات ہے, ہم بھاگے ہوئے ہیں خدا اور رسول سے, اس کی کتاب سے, سمجھے ہم اس کے مطابق کہتے ہیں. کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسی دوسری بھی رگ پکڑتا ہے سر رب تو چلے جانی ہوں گے وہیں جو عبدالحم الحق تو یا تو رہے مجھے اگر یہ دیکھیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کرانے میں ہمارا فائدہ ہے, بھاگے ہوئے جاتے ہیں جی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں. کہا یہ روش کیا ہے, کسی فیصلے میں نقصان ہو رہا ہے قرآن کی روح سے تو شریعت آ جائے گی, رواج آ جائے گا اور کہیں گا ایماندار ہے اس میں فیصلہ نہ فائدہ نظر آئے گا تو یہ قرآن کے مطابق. کہتا ہے فی قلوبہم مرض, دل میں روگ ہے. کیا یہ صورت ہے؟ دل میں روگ, ہمیں تابو یا انہیں شک ہے اس بات میں کہ ہمارے ساتھ یہ جو کہتا ہے کہ یہ حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, کیا اس میں شک پیدا ہو گیا؟ ام یا خاتون یتیف اللہ علیہ و رسول, یا انہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا اور رسول کی طرف اسلامی نظام کی طرف جائیں گے, اگر قرآن کے مطابق یہ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ بے انصافی کریں گے, یہ چیز ہے؟ کہا نہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے, بل اولئک ہم الظالمون. کہاں ظالمون کا لفظ آ رہا؟ بات ساری یہ ہے کہ جس مقام پہ کسی شے کو ہونا چاہیے انہوں نے وہاں اسے نہیں رکھا, جس مقام پہ قرآن کو ہونا چاہیے یہ وہاں نہیں رکھا, جس مقام پہ خدا کو ہونا چاہیے یہ وہاں نہیں رکھا, بس ان چیزوں کو انہوں نے اس کے مقام بدل دیے ہوئے ہیں. رواج نے شریعت کی جگہ دی, شریعت نے پھر خود کتاب اللہ کی جگہ دے دی, کتاب اللہ تلاوت کے لیے اور ثواب کے لیے رہ گیا, یہ قصہ ہوا. دین کی جگہ مذہب نے لے لی, یہ بس جگہیں بدلی ہوئی ہیں انہوں نے, جس مقام پہ کسی شے کو ہونا چاہیے اس مقام پہ نہیں رکھا. چیزیں تو ساری ان کے یہاں ہیں, نام بھی ان کا دیتے ہیں, مقام بدل دیا ہے, جگہ بدل دی ہے, بجائے اس کے کہ یہ قرآن کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوتا, یہ قرآن اب ایک شبینے میں الفاظ دہرا دینے کے لیے رہ گیا ہے, مقام بدلا ہے. قرآن کے اوپر زبان سے ایمان کا لفظ جو ہے وہ نہیں بدلا ان لوگوں نے, یہ ان کی کہتی ہے. اور ان کے مقابلے میں, پانچ منٹ ہیں, آؤ ان کے مقابلے میں بتائیں کہ مومن کون ہے؟ اوپر تو تھا نا یقولون آمنا باللہ و برسول, ایمان کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لائے, فیصلے اور جگہ سے کراتے ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, مومن وہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اس نظام کی طرف سے تمہارے معاملات میں جو فیصلہ کرے, جو ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے فیصلہ, ہم اس کے سامنے سر تسلیم کام کرتے ہیں, ہم اس کی عطایت کرتے ہیں. مومن یہ ہے, سنتا ہے عطایت کرتا ہے. ہم وہ ہیں جو ساری رات پورا قرآن سنتے ہیں اور اپنے اختلافی معاملات کے فیصلے اور مقامات سے کراتے ہیں. کہتا ہے سمے نا سنتے ہیں, چاہے تو بھی عطایت, ہم عطایت کرتے ہیں. اڑائے کا ہم المفل ہوں, کہا کہ کھیتیاں ان کی پروان چڑھتی ہیں, وہ کرتا ہے کچھ ذرائع کے قانون کو گھر میں بیٹھا ہوا ذرائع چلا جا رہا ہے تو فصلیں تو نہیں پکن رہی ہیں, فصل اس کی پکتی ہے تو جو قانون ہے ذرائع سے واقف ہے, پھر اس کے مطابق کھیتی بوتا ہے, کاٹتا ہے, اولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی اولئک هم الفائزون. ہاں جو عطایت کرتا ہے اس نظام خداوندی کی جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے اور پھر حفاظت اور احتیاط برتتا ہے کہ میرا کوئی قدم اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے تقویٰ یہ ہوتی ہے اولئک هم الفائزون. یہ وہ ہیں کہ جو کچھ اچیو کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کی روح سے انتہائی منزل جو ہے دین کی نجات نہیں ہے. نجات تو پہلے کسی عذاب میں گرفتار ہونے سے چھٹکارے کا نام ہوتا ہے نا. پہلے وہ پھنساتا نہیں ہے پھر اس کے بعد چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مومن تو پھنستا ہی نہیں ہے اس لیے اس نے فائزون کا لفظ فوج کے معنی ہوتا ہے سم تھنگ اچیو کچھ حاصل کیا جائے. نجات میں حاصل نہیں کیا جاتا. سو مہینے کی قید ہو اس کے بعد چھ مہینے کے بعد یا اس سے پہلے ہی اگر کوئی پروکلامیشن ہو جائے وہاں سے نجات حاصل ہو چھٹکارا حاصل ہو جائے تو کچھ حاصل نہیں اس سے ہوتا. بیمار ہو جائے صبح صحت والا انسان تھا درمیان میں بخار ہوا شام کو بخار اتر گیا تو زیادہ سے زیادہ جیسا صبح تھا ویسا پھر ہو گیا شام ایز یو ور. اچیو نہیں کچھ کیا اس نے. خدا نے مان کیا میں عرض کروں ایک ایک لفظ قرآن کا ایک کانسیپٹ جو تصور دیتا ہے. نجات کا تصور نہیں ہے قرآن کی روح. فوج کا فلاح کا تصور ہے وہی ہے کہ جو کچھ اچیو کرتے ہیں. خدا نے مان ہم سورہ النور کی آیت 52 تک آ گئے اور اس کے بعد 53 آیت سے آئندہ درس میں دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.